नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और प्रत्येक साल 80 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन से उनकी मृत्यु होती है। विश्व के करीब 2.5 करोड़ आबादी कैंसर के मरीज है और एक आकलन के अनुसार 2025 तक 3 करोड़ होने की संभावना है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत तंबाकू का उत्पादन और उपभोग में दूसरे नंबर पर है। इस अवसर पर आज विश्व तंबाकू दिवस की थीम रखी गई है, हमें भोजन चाहिए तंबाकू नहीं। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए। गायकवाड़ सर, मोबाइल पर स्वागत सर आपका।
जी धन्यवाद साहब, नमस्कार। और तंबाकू निषेध दिवस आज दिवस है और एक ऐसा हमारे सभी लोगों की तरफ से एक ऐसा प्रतिकार इस तंबाकू के विरुद्ध होना चाहिए और उसकी जागृति के संदर्भ में दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जी
जी सर, सर विश्व तंबाकू दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
मैं ये जो दिवस है ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और जो हमारी विश्व स्तर की बात करें या भारत की बात करें तो एक बड़ा वर्ग जो है तंबाकू के प्रभाव में आ रहा है और उसकी वजह से जो कैंसर का जो उनके शरीर में प्रभाव हो रहा है, जैसे मुंह का कैंसर हो रहा है, गले का कैंसर हो रहा है, स्तन मतलब हथेड़ी वाला जो कैंसर हो रहा है, बहुत भयानक भयावह स्थिति निर्मित होती जा रही है और सरकार जो है इसके ऊपर ध्यान दे रही है, लेकिन जो जागृति होनी चाहिए खास करके ग्रामीण क्षेत्र इसका बहुत बड़ा उपभोग करने वाला क्षेत्र है और मैं चाहता हूँ कि जन जागृति के माध्यम से इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता के संदर्भ में कहना चाहूंगा।
सर, क्या इन दिनों देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका सेवन कर, इसके जागरूकता के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए सर?
जागरूकता के लिए प्रयास हो रहा है लेकिन ये जन सामान्य के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया तंबाकू। हर छोटा बड़ा बच्चा तंबाकू खा रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे होने वाले दुष्प्रभावों से कुछ लोग परिचित भी है, कुछ लोग अपरिचित भी है, लेकिन अपरिचित लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनको यदि जागृत किया जाए और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से परिचित किया जाए, संगोष्ठी ली जाए, स्कूल स्तर पे इसकी बात की जाए और लोगों को इसके होने वाले नुकसानों से अवगत कराया जाए, तो हो सकता हम एक परिवर्तन की लहर चला सकते हैं और बिल्कुल संभव है ये, है ना। हालांकि हम लोग अपने स्तर पे अभी राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जी के कार्यक्रम चल रहा है, अभी सौंसर में पिछले बार मुलतई में कार्यक्रम चला था, हम वहां कहते हैं कि तंबाकू जो है आपके लिए पूरी तरह से हानिकारक है, क्योंकि उसमें जो निकोटीन होता है वो आपको बहुत नुकसान कर सकता है, इसलिए उससे बचना चाहिए क्योंकि वो सीधा आपकी जो सेल्स ग्रोथ है या उसको डिफेक्ट कर सकता है, इसलिए उसके प्रति सावधानी की आवश्यकता है। जी
जी सर, इसी को लेकर शासन स्तर पर इनके जो फुटकर व्यापारी है जो खुले में इनको बेचते हैं, इसके प्रतिबंध को लेकर क्या कोई लाइसेंस या अन्य प्रतिबंध के माध्यम से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है सर?
नहीं, बिल्कुल नियंत्रण पाया जा सकता है लेकिन मुझे सरकार की इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है। देखिए, नई जो आबकारी नीति आई है या जो इस तरह के जो मतलब जो चीजें हैं जिससे नुकसान होता है हमारे शरीर, ये बात गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से जानती है लेकिन उसको एक उत्पादक के तौर पे इसका भरपूर मात्रा में उत्पादन करके गवर्नमेंट को बढ़ावा देती है, उसको एक आय का बड़ा स्रोत मानती है। देखिए, महुआ देखिए साधारण स्तर पे खरीद के है लेकिन उसका उसमें वैल्यूएट करके फिर जब उसको शराब के रूप में बेचा जाता है तो 40-40 रुपया 100 रुपया साधारण शराब बिकती है, तो सरकार को तो आय हो रही है लेकिन जनमानस जो है टाटा मेमोरियल जो हॉस्पिटल है बॉम्बे का, राष्ट्र संत टुकड़ो जी हॉस्पिटल है नागपुर का, वहां जाके देखिए तो उसकी भयावहता पता चलती है कि तंबाकू से कितना नुकसान होता है। तो खास करके जो युवा पीढ़ी, क्योंकि भारत जो है ना 65 करोड़ युवाओं का देश है, हम लोग अब चीन से भी आगे हो गए क्योंकि हमारी आबादी 1.43 करोड़ हो गई, हम लोग 30 लाख चीन से ज्यादा आ गए, तो इसलिए जरूरत है इस देश के युवाओं को इससे अवगत कराने की। अब देखिए, सिगरेट बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने लग गए हैं, मतलब सिगरेट पीना एक प्रकार का फैशन बन गया है, तंबाकू गुटखा इतना अधिक हो रहा है कि खाना नहीं खाएंगे लेकिन 40-40, 50-50 रुपए के गुटखे खाते और उसका सेवन करते हैं। अभी मैं छिंदवाड़ा में जब पढ़ता था तो वहां हल्का टॉकीज है, वहां तंबाकू से थूक की बात की जो गंदगी होती थी कितना बेकार लगता था। और खास करके हमारा छिंदवाड़ा साइड जो है ना बहुत अधिक सेवन करता है उसका, मतलब छिंदवाड़ा क्या सभी जगह होता है लेकिन छिंदवाड़ा में कुछ ज्यादा इसका सेवन है। तो इसके ऊपर नियंत्रण सरकार को भी करना चाहिए, जन जागृति भी फैलाना चाहिए और सरकार जो मादक द्रव्य निषेध अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं करती गवर्नमेंट, बस वो दिखावे के लिए कार्रवाई होती है, बाकी उनकी इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है। क्योंकि इससे जुड़े हुए जो उद्योग धंधे है वो बड़े लोगों के है, इनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है तो वो क्यों चाहेंगे इनसे अपना नुकसान कराना, क्योंकि उनको फंडिंग होती है फिर राजनीतिक, मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्ति की। अभी शराब की जो भट्टियां खुली है जगह जगह, यहाँ कौन से लोग उसके मालक है? सारे राजनीतिक लोग हैं जिनको राजनीतिक बड़े स्तर पर संरक्षण देते हैं, उनकी दादागिरी चलती है। तो साहब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मानता हूँ उसको, इस चीज पे कानून तो है हर जगह है लेकिन उसका क्रियान्वयन कहाँ हो रहा है? बस खाली औपचारिकता होती है बस, बाकी कुछ नहीं है। जी
सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस तरह के मादक पदार्थों के उत्पादन में किसान ही इसका उत्पादन करता है। किसान की दृष्टि में इन मादक पदार्थों या तंबाकू के उत्पादन की रोक के साथ में दूसरे फसलों के उत्पादन करे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाए किसानों को किस तरीके से?
देखिए अभी देखिए मुरैना में शहद होता है, शहद स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, अफीम होता है आपके नीमच में, गांजा होता है आपके बुरहानपुर में, मैं मध्य प्रदेश की बात करूं पूरे देश में सबसे ज्यादा गांजा हिमाचल प्रदेश में होता है। ये मतलब मादक द्रव्य के अंतर्गत औषधीय में आते हैं लेकिन इसका उपयोग हम लोग औषधीय उपचार के लिए करें, औषधीय संदर्भ में करें तो फायदेमंद है। लेकिन लोग उसका मतलब उसका विरोधात्मक स्थिति जो है पूरे खुले तौर पर कानूनी रूप से क्रियान्वित नहीं होती, इसलिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। यदि उसका औषधि, अब देखिए महुआ जो है बहुत औषधि युक्त पौधा है, गाजा भी है, लेकिन उसको उस स्वरूप में रखा जाए और इसके पीछे धार्मिक दृष्टिकोण भी बड़ा खतरनाक है। अब देखिए भगवान भोलेनाथ की जो भक्त है, मैंने देखा बुरा भगत की जब यात्रा लगती है तो महाराष्ट्र का एक बड़ा वर्ग इधर आता है महाराष्ट्र में, तो मैं पूछा आप क्यों आते इतने भीड़ में, तो बोले गपई, मैंने कहा क्या होती गपई, तो बोले वो शराब मिलती वहां सस्ते में, तो मैंने कहा वो क्या तो गलत है, तो बोले भगवान ने विष धारण किया था कंठ में, हम उनके अनुयायी इसलिए हम शराब धारण करते हैं। अब दादाजी महाराज का जो प्रसाद चढ़ता है वो गांजा के रूप में चढ़ता है, वो प्रसाद के रूप में, उसको मैंने कहा ना औषधि रूप में ले, तो वो धार्मिक दृष्टि से भी कई चीजें ऐसी इंगित की गई है कि वो धर्म में उसका महत्व है, इसलिए भी समाज का एक बड़ा वर्ग उसका सेवन करता है। ये थोड़ा सा सामाजिक स्तर पे परिवर्तन लाके हो सकता है, इसमें प्रतिकार किया जा सकता है इसका। जी
सर, कई जगहों पर स्कूली परिसर में भी इन मादक पदार्थों को बेचते हैं फुटकर व्यापारी, इनके कारण युवा पीढ़ी ज्यादातर उन पर अट्रैक्ट हो रही है, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए के जमीनी स्तर पर क्या प्रयास किए जाए सर?
देखिए साहब, मैंने अभी राष्ट्रीय संत टुकड़ू जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा है, जीवन शिक्षण सुसंस्कार का कार्यक्रम, तो वहां पे जो बच्चों को जिस तरह से संस्कार करके जीवन जीने की पद्धति सिखाई जाती है वो अपने औपचारिक रूप से जो शिक्षा दी जा रही है उसमें कहीं नहीं होती। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे संसद में जो कार्यक्रम हुआ पिछले साल मोगांव में हुआ, गोटी में हुआ, ये इस तरह के कार्यक्रम जो है जीवन शिक्षण सुसंस्कार कार्यक्रम करा के बच्चों में एक अच्छी संस्कार की शिक्षा डाल के हम परिवर्तन ला सकते। अभी देखिए इसमें बहुत सारे स्कूल परिसर में लिखा रहता है कि 100 मीटर के दायरे में ये होना नहीं चाहिए, वो बोर्ड पे लिखा है, लेकिन शिक्षण संस्थान भी कहां तक ध्यान देगा? बच्चे गुप्त रूप से अपने जेब में गुटखा लेके जाते हैं। अभी देखिए एक रिपोर्ट मैंने देखा था, एक संत कह रहे थे कि हैदराबाद में जो मल निकलता है उस मल को स्टोरेज करके उसको क्लोरीन से व्हाइट कलर में कन्वर्ट करके उसको सुखा के उसका पाउडर कानपुर जाता है, वो कानपुर में जाके बायोमेट्रिक प्रणाली से उसका सुधार होता है, वो
जी सर सुन पा रहे सर जी। तो ये थे हमारे साथ मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। गायकवाड़ सर मोबाइल वाणी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।